ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के द्वितीय अध्याय अध्याय शीर्षक असुरराज हिरण्यकशिपु श्लोक संख्या 13 पाठ करेंगे। कृपया आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। इति ते भर्तृ निर्देशम् इति ते भर्तृ निर्देशम् आदाय शिरसा धृतम् आदाय शिरसाधृताहम् तथा प्रजानं कदनम् तथा प्रजानं कदनम् विदधुः कदन प्रियाहम् विदधुः कदन प्रियाहम्। शब्दार्थ इति इस प्रकार ते वे भर्तृहि भर्तृ स्वामी की निर्देशम आज्ञा आदायम प्राप्त कर शिरसा सिर केवल आदृताहम आदर करते हुए तथा और प्रजानम सारे नागरिकों का कदनम दंड विदधुहु दिया कदन प्रियाह अन्य को दंड देने में पट्टू। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अनुवाद इस तरह जघन्य कर्मों के लिए लालायित असुर ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदरपूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कार्यों कृत्यों में जुट गए। अब लोग दोहराएंगे। इस तरह जघन्य कर्मों के लिए लालायित असुरों ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदरपूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों में जुट गए। भावार्थ जैसा कि यहां पर बताया गया है आसुरी सिद्धांतों के अनुयायी सामान्य जनों के प्रति नितांत ईर्ष्या से भरे रहते हैं। आजकल की वैज्ञानिक प्रगति इस ईर्ष्या का जीता जगता उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा की खोज जनता के लिए विपत्तिजनक रही है, क्योंकि संसार भर में असुरगण नाभिकीय हथियार बना रहे हैं। इस प्रसंग में कदनप्रिया शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। असुरगण जो वैदिक संस्कृति को विनष्ट कर देना चाहते हैं, वे निर्बल नागरिकों से अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि उनकी खोज अंततगत्वा हर एक के लिए अकल्याणकारक सिद्ध होते हैं। जगतो हितः, भगवती गीता के 16वें अध्याय में यह भलीभांति बताया गया है कि असुरगण सामान्य जनों के विनाश हेतु किस प्रकार पाप कर्म में रत रहते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतिर्गतिः मत् सर्वस्व पादंबुजौ श्री राधा मदन मोहनौ। दिव्यादिवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्ध श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन् रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणुश्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि।
गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि बर्हा पीडं नटवर वपुहु कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ति च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः प्राविशद् गीतकीर्तिः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम् इति ते भर्तृ निर्देशम् आदाय शिरसा धृतः तथा प्रजानं कदनं विदधुः कदन प्रियः। इस तरह जघन्य कर्म के लिए लालयित असुरों ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा को अत्यंत आदरपूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों में जुट गए। तो प्रसंग हम लोग सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप के छोटे भाई जो कि देवताओं के द्वारा विष्णु के सहायता से देवताओं के द्वारा विष्णु के सहायता से वो मारे गए। तो उस हिरण्याक्ष का छोटे भाई हिरण्यकश्यप का हिरण्याक्ष का वध का उपरांत किस प्रकार हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधान्वित होकर किस प्रकार कार्य में वो प्रवृत्त होने जा रहे हैं इसका वर्णन हम लोग सुनते आ रहे हैं। उन्हें तो पहले भगवान विष्णु को ऐसे ही उनका सारे सद्गुणों को वर्णन किया कि ये विष्णु ये पहले ऐसे ही नहीं था, ये तो बहुत समदर्शी था है, लेकिन अब क्या हो गया पता नहीं, ये देवताओं उसको बहलाकर ऐसे ही भाग दौड़कर उनका कान भर दिए। अभी उनके पक्ष में ही सब कुछ बोलते हैं और करते हैं, अभी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और मेरे जो कि छोटे भाई मुझे अत्यंत प्रिय है तो उनको मार डाला। तो इससे बहुत दुखित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं हाथ में वो त्रिशूल लेकर, ऐसे ही बता रहे हैं कि जब तक इस त्रिशूल से वो विष्णु का गर्दन नहीं उड़ा दूंगा और उससे जो खून रुधिर जो श्रावित होगा उस रुधिर से मेरे छोटे भाई जो कि रुधिर के लिए बहुत प्रिय है, रुधिरासन माने खून को पीने में वो बड़ा आनंद लेता था, तो उसको इस खून से रुधिर से मैं उनको तर्पण करूंगा। और इस प्रकार जैसे परसु राधारमण महाराज जी ने बता रहे थे किस प्रकार इन्होंने इष्ट गोष्ठी बुलाई, अपने प्रिय जो असुरगणों को बुलाकर उनको बता रहे हैं इष्ट गोष्ठी में कि अब क्या करना है सुनो, अब विष्णु को मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं उनको संभाल लूंगा, लेकिन तुम लोग धरती पर जाओ, धरती पर जाकर और इन इन स्थान में, कौन कौन स्थान में ये कहा, ये कहते हैं यत्र यत्र बीजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहां जहां धरती पर ब्राह्मणों के निवास स्थान है, जहां वो निवास करते हैं, और जहां जहां गौएं, गौशाला हो, गौएं जहां रहते हैं वहां जाओ, और जहां जहां वेदाध्ययन होता है, गुरुकुल आदि पंडितों के बीच में जहां जहां वेद अध्ययन होता है उस स्थान पर जाओ, और जहां पर वर्ण एवं आश्रम आश्रम अनुरूप कार्यकलाप सब होता है वहां जाओ। क्या करना वहां जाकर? ये कहते हैं तम तम जनपदम यात, उन उन जनपदों को जाकर संदीपयत, सन सम दीपयत, अच्छी तरह से उनको जला डालो, कुछ न बचे, पूरा खाक हो जाए, ऐसे ही करो। और मानव सभ्यता के लिए जो प्रयोजनीय वस्तु सबसे उत्कृष्ट है वृक्षराजि, तो उन वृक्षों को काट डालो, तो बस विष्णु का ताकत खत्म हो जाएगा, और देवतालों को विष्णु का बिना वो तो ऐसे ही सूख कर जैसे ही पता जड़ जाते हैं, तो बस उनका ऐसे ही हालत हो जाएगी। तो उन्होंने भेजा, तो देवताओं ने सॉरी असुरों ने पूछा कि हम धरती पर, आपका तो कलह किससे? देवताओं से, और धरती पर जाकर हम क्या करना है? ना धरती पर इन ये सब ब्राह्मण गौएं वृक्ष और जो भी आगे आएंगे अगला श्लोक में 14 में वर्णन करेंगे कि कहेंगे पूरा ग्राम और ब्रज मतलब गौएं के निवास स्थान, इस गौशाला वही है, इसलिए इस वृंदावन को उसको ब्रज भी कहते हैं, क्योंकि उस समय गोधन ही सर्वस्व था, जिनके पास जितने गौ हैं तो उतना वो समृद्ध है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा के कितने गौएं थे? 9 लाख गौएं थी, समझो 9 लाख। तो इसलिए तो जिनका जितने गौएं हैं तो उतने वो समृद्धशाली, तो उन जगह को जाकर आप लोग सब उनको सब जला डालो, बिल्कुल कुछ ना रखो, फिर ना ब्राह्मण रहेंगे, ना वेद रहेगा, ना ये वृक्ष रहेंगे यज्ञ के लिए, क्योंकि मानव सभ्यता के लिए ही इन वस्तुओं का आवश्यकता है, शांति एवं प्रगति समृद्धि इनके लिए, इन मानव सभ्यता का शांति एवं समृद्धि के लिए ब्राह्मण वेद गौएं वर्णाश्रम ये नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इनके आधार पर ही मनुष्य सभ्यता वो खड़ी है। अगर इनको आप जड़ से नष्ट कर देंगे तो बस मानव सभ्यता जो प्रगति है, शांति समृद्धि है, वो सब आप खत्म हो जाएंगे। तो देखो आसुरी स्वभाव संपन्न व्यक्ति कैसे मानव सभ्यता का जो शांति एवं समृद्धि के जो जड़ है तो उससे वो कुठाराघात करते हैं, मानव सभ्यता जैसे गिर जाए। उनको तो वही चाहिए, क्योंकि हमेशा असुरों ने मानव सभ्यता विष्णु के जितना भी प्रकल्प है, योजनाएं हैं, उनका खिलाफ हमेशा ये स्वर उत्तोलन करते हैं। ऐसे हम अपने राष्ट्र में हम देखते हैं जो सरकार कितने प्रकार सुख सुविधा के लिए जो भी करती है, तो उसके खिलाफ जो इस प्रकार आसुरी स्वभाव संपन्न व्यक्ति बिल्कुल उनका विपरीत खड़े हो जाते हैं। ये सब नहीं चाहिए, ये अनादिकाल से देखो ये सतयुग घटना है, अभी तो कलयुग है, तो प्रारंभ से ही भले ही ये सब भगवान विष्णु के भगवान की इच्छा से ही संगठित होता है, उनके इच्छा बिना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला उनका इच्छा बिना, तो भगवान के इच्छा, क्योंकि जब मनुष्य सभ्यता जब ये धरती पर आए तो भगवान ने स्वयं उनको ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तद तद वैश्य पदभ्यम शूद्र अजायत, ऐसे ही भगवान ने सृष्टि की, अपने सर मुख से ब्राह्मणों को, बाहु भुजा से क्षत्रियों को, और उदर से ये वैश्यों को, इसलिए वो वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सब समाज के बहुत उनका योगदान है, तो नितांत इनका आवश्यक है। और ब्राह्मणों को तपस्या, उनका तपबल और क्षत्रियों का बाहुबल, उससे ही संसार सुरक्षित रहता है। ब्राह्मणों के तपबल हम देखते हैं किस प्रकार ब्राह्मणों ने जब जो भी बोल देते हैं सो हो जाता था, आजकल जैसे ऐसे ही नहीं है, जैसे जैसे श्रृंगी ने क्या किया, समी के शाप दे दिया परीक्षित महाराज को, भले ही बाद में उन्होंने पश्चाताप किया लेकिन तुरंत तो उनका शाप फलीभूत हुआ, 7 दिन के अंदर उनको तक्षक दंश कर खत्म कर दिया। तो इसलिए तपसा चियते ब्रह्म, भगवान प्रसन्न होते हैं तपस्या से, क्योंकि हमारे अंदर जो अनर्थ हैं वो अनर्थ का दूरीभूत केवल तपस्या के द्वारा ही संभव है। जैसे हम लोग तपस्या, जैसे आग में सोने का, सोने जो मिश्रित सोने होते हैं ना, अलंकार आभूषण आदि बनाते हैं, फिर उनको अगर हम तोड़कर फिर हम नया आभूषण बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उनको तोड़कर आग में डालते हैं, तो उनमें जो भी मिश्रण दूषित पदार्थ है वो सब जलकर राख हो जाते हैं, और केवल सोना ही प्योर 24 कैरेट सोना ही बच जाता है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में जो अशुद्धिकरण को दूर करने के लिए तपस्या का बहुत जरूरी है, तपसा चियते ब्रह्म। उसी प्रकार जब तपस्या करें, तपस्या का अर्थ क्या है ना, तपस संतापे, जानबूझकर इंद्रियों के जो भोग भोग्य वस्तु है उनसे आप दूर रहना, वो चाहते हो, इंद्रियां चाहती हैं उनको भोग प्रदान की जाए, लेकिन जानबूझकर बुद्धि के बल पर आप उनको रोक देंगे, वही है तपस्या। उसके द्वारा क्या होता है ना, शरीर का शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण ही हमारे अवरोधक है भगवत विज्ञान में। भगवान को समझने के लिए, भगवान का प्रत्यक्ष करने में यही अंतःकरण है, हमारे अंदर यही अशुद्धि अंतःकरण ही रुकावट है। तो भगवान कहीं दूर देश में नहीं है, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, सभी का हृदय में परमात्मा विद्यमान, भगवान विद्यमान है। वेदों में भी वर्णित है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिशस्व जाते, इस वृक्ष रूपी शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी निवास करते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, जब हमारे मन का गति को हम रोक देंगे, मन का गति को, क्योंकि स्थिर वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप दौड़ भाग दौड़ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो स्थिर वस्तु है तो उस स्थिर वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको भी स्थिर होना पड़ेगा, अन्यथा भाग दौड़ से वो स्थिर वस्तु प्राप्त नहीं होता है। अंदर ही भगवान है, बाहर ही खोजते हैं हम, ये तो हमारे अज्ञान, ये मूर्खता है। इसलिए कबीर जी क्या कहते हैं, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुन आवत हासी। कहते हैं हम लोग प्यास लगने से पानी लाते हैं, पीते हैं, तो जल में मछली रहती है, वो मछली को जब प्यास लगता है तो वो क्या करते है, वो ढूंढता है कहां कैसे मैं प्यास बुझाऊं। पानी में मीन प्यासी, उसी प्रकार हम लोग भागदौड़ करते हैं, भले ही प्रारंभिक अवस्था में हमें इतने मनुष्य समाज, कलयुग में मनुष्य समाज इतने अधोपतन हो चुके हैं, तो भले ही हमको प्रारंभिक अवस्था में इन सब नियम कानून को पालन करना पड़े, लेकिन भगवान को खोजने के लिए बाहर कहीं नहीं है। तो अभ्यास करते हैं मूर्ति में, तो फिर धीरे 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 हम अंदर ही खोज करेंगे। तो नव योगेंद्र का उपाख्यान में एकादश स्कंद में किस प्रकार वर्णन किया गया, कहते हैं केवल भगवान का ये जो मूर्ति है उसी में केवल भगवान विद्यमान नहीं है, सभी का अंदर विद्यमान है। तभी तो उन्हीं के सत्ता से ही हम चेतन होकर इस प्रकार बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब करते हैं। उनका बिना हमारा अस्तित्व असंभव, इसीलिए तपस्या जरूर है। तो इन तपस्या को ब्राह्मणों को हटा देंगे, उनका तपबल खत्म हो जाएगा, और उनके द्वारा प्रदत्त जो वेदों का अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त क्षत्रियों को वो ज्ञान प्रदान करते हैं किस प्रकार समाज का सुरक्षा करें, तो वो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो वेद नहीं रहा तो ब्राह्मण नहीं रहे, वेद नहीं रहा तो और ज्ञान कहां से रहेगा। एक एक कर जो शांति एवं समृद्धि का जो उपादान कारण है, मूल आधारभूत वस्तुओं को वो नष्ट कर दो। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जो असुर सहयोगी थे उनको इस प्रकार आदेश देकर उन्होंने धरती पर भेजा कि जाओ इनको, और मैं वो विष्णु मायावी विष्णु को मैं समझ लूंगा, बस मेरे हाथ में त्रिशूल है तो बस उसको तो इस बार ही खत्म कर दूंगा, ना रहे विष्णु ना ये ब्राह्मण आदि, हाँ जिनके द्वारा फूलते फलते वो भी नष्ट हो जाएंगे, पेड़ को जड़ को काट देंगे तो पेड़ अपने आप सूख जाएंगे। तो इस प्रकार विष्णु सभी का जड़ है, तो उनको मैं मार देता हूं और तुम लोगों को इस प्रकार जाकर धरती पर ये सब उपद्रव मचाना है। तो इस प्रकार आदिष्ट होकर, इसलिए कहते हैं इति ते भर्तृ निर्देशम, इस प्रकार अपना जो भर्ता पालन करने वाला जो हिरण्यकश्यप असुरराज, तो उनका निर्देश को, और देखो कितना असुर लोग बहुत चालाकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना बुद्धिमान होते हुए उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये विष्णु ये अजय है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आ रहे हैं, ये बिल्कुल समझ में आ रही है कि विष्णु ये विष्णु का माया है। ये ज्ञान दे देते हैं जाओ ये सब नष्ट करो और मैं भगवान विष्णु को मार डालूंगा, और ये इतने ही इतने उसका समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये अजन्मा विष्णु कभी मरने वाला नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं गीता में नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः, ना ये अस्त्र के द्वारा कटा जा सकते, ना वायु के द्वारा शुष्क, जल के द्वारा गीला किया जा सकता, ये आत्मा अजर अमर है कि यो जन्म नहीं लेता है, अजोपि सन अव्यय आत्मा है ना, तो ये अज न जायते, इति अज, उसका जन्म नहीं है, जो जन्म होता है वही मरता है और ये विष्णु का जन्म नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार वो जानता है फिर भगवान के माया के द्वारा, तो उसका बुद्धि मारी जाती है और वो सोचता है कि मैं विष्णु को मारूंगा, लेकिन विष्णु को मारेगा ना स्वयं विष्णु के द्वारा मारा जाएगा, आगे तो फिर मरेगा ही विष्णु के, भले ही वो भगवान का इच्छा है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो असुर उनके प्राप्त हुए थे, स्वयं भगवान का पार्षद जय विजय थे, लेकिन अभी अभिनय कर रहे हैं, अभिनय भगवान का अभिनय, संसार में जो भी कुछ लीलाएं वो करते हैं वो ऐसे ही तैसे ही आलतू फालतू नहीं है, वो केवल जगत के शिक्षा के लिए, जगत के शिक्षा के लिए ही वो उनका सारे, ऐसे ही आप एक ही भगवान का लीला वर्णन करो जो कि बिल्कुल बेकार है, उनका कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही नहीं है, सारे लीलाओं में वो देखकर सिखाते हैं हमको, जगत को। अगर असुर, असुरों को मारने के लिए उनको यहां पर धरती पर आना और ये करना वो सब उनके लिए कुछ नहीं है, तो वही वो इच्छा, वही बैठकर इच्छा करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर भी लीला करने के लिए स्वयं को आना ही पड़ता है। उपनिषद में और श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंध में भी उल्लेख है, किस प्रकार कहते हैं, भीषा अस्मात् बात पवते, भीषो देति सूर्यः, भीषा इंद्रश्च अग्निश्च मृत्युर्धावति पंचम। जिनके भय से, भीषा अस्मात् बात पवते, जिनका भय से ये वायु सब चलाचल करते हैं, भीषो देति सूर्यः, जिनके भय से ये सूर्य एक पल एक निमिष अभिलंबे रोजाना वो अपना कार्य में रत रहते हैं, उदय होते हैं अस्त जाते हैं। भीषो देति सूर्य, भीषा इंद्रश्च अग्निश्च, और इंद्र और अग्नि ये भी भयभीत रहते हैं। मृत्युर धावति पंचम, ये मृत्यु हाथ जोड़कर उनके आज्ञा को पालन करने के लिए अपना सिर झुकाकर हमेशा तैयार रहता है, तो ये असुरराज हिरण्यकशिपु क्या कर सकता है वो भगवान विष्णु का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन उन्होंने जगत को, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, भगवान विष्णु आएंगे असुरों को विनाश करेंगे, तो यही शिक्षा देते हैं, जब संसार में वो उपद्रव मचाएंगे असुर, तुरंत भगवान विष्णु नहीं आते हैं, जब उनका पाप का घड़े भर नहीं जाते हैं तब तक भगवान विष्णु हाँ प्रतीक्षा करते हैं, और जब पूर्ण हो जाता है फिर स्वयं आते हैं। तो स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार भगवान का आगमन होता है, और हमको क्या शिक्षा उससे प्राप्त हुई, तो हमें असुरों के ये जगत ये संसार, संसरतीति संसार, प्रतिपल विनाशील है, तो ये विनाशील जगत में हम जो आशा बांधकर बैठे हैं, बहुत सारी योजनाएं प्रकल्प बनाकर बैठे हैं, तो ये करूंगा वो करूंगा, इसके लिए हम शिक्षा देते हैं कि पदम पदम यद विपदम, ये संसार में हर पग पग पर विपत्तियां हैं, तो इस संसार हमारे लिए हमारे रहने के लायक नहीं है, यहां से जल्दी जाना है। कहां जाना, जहां से आए वहीं जाना है, और जाएंगे कहां, क्योंकि हम भगवान के ही अंश, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सनातन अंश विशेष ये जीव है जीवलोक में, तो हमारे प्रमाद के कारण हमें यहां आए, भगवान ने भेज दिए, जाओ तुम्हारी इच्छा भोग करना तो जाओ भोग कर देखो, अब सुख मिलता है ना दुख, अब हम लोग भुक्तभोगी इस संसार में कितना हमको सुख मिलता है और कितना दुख मिलता है। जो सुख है ना वास्तव में वो सुख नहीं है, ये दुख का लाघव है। यहां सुख है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर में आप सुख का खोज कर रहे हैं, यहां सुख नहीं है। जो तथाकथित हम जो विषय सुख को हम सुख मानते हैं, वास्तव में वो तो परिणाम अंततगत्वा वो दुख में ही अवसान होता है। दुख ही दुख हमको भोगना पड़ता है, उससे हमको सुख नहीं है। सुख तो है ही नहीं है, सुख कहां मिलेगा, बाहर कहां खोजेंगे, सुख ही अंदर है। सच्चिदानंद हम ही है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका अंश हम भी सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। और ये सब जितने भी जो सब भोगी संसार के उपभोग का जितने भी संसाधन हम जुटाकर बैठे हैं, वो तो लगता है कि हम सुख प्रदान करेंगे, वास्तव में ये सब दुख का कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या कहते हैं, कहते हैं ये वैज्ञानिक जो एक क्या कहते हैं, हाँ, नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी, उसी को उसे निर्माण करते हैं वो। किस लिए उनको पूछा जाए, आप लोग अपने अपने देश में राष्ट्र में ये सब जो मानव सभ्यता को ध्वंस करने वाले ये जो अस्त्र शस्त्र, इनको क्यों निर्माण करते हैं, कहते हैं कि शांति एवं सुरक्षा के लिए। अगर सभी शांति एवं सुरक्षा के लिए, शांति एवं सुरक्षा चाहते हैं, तो फिर इन ये जो आत्म जो समाजघाती ये सब अस्त्र शस्त्रों का क्यों निर्माण करते हैं, ये जो नाभिकीय ऊर्जा बा न्यूक्लियर बम, ये तो समाज को युग युग तक पूरा रसातल को ले जाएगा। और ये जानते हुए भी ये सर्व विनाशकारी, फिर भी उससे विरत नहीं होते हैं, एक के बाद एक नया नया ऊर्जा शक्ति को निर्माण करते हैं, जो कि समाज के प्रति बिल्कुल विपरीत है। उनका शांति और समृद्धि कहां होगा, तो शांति अशांति एवं दुख ही दुख। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग, ये वैज्ञानिक लोग जो इस प्रकार अस्त्र शस्त्र निर्माण करके तो माने ढेर जकीरा बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, तो मानव समाज का ध्वंस के अतिरिक्त और कोई कार्य उससे साधित नहीं होता है। अब बताओ ये न्यूक्लियर बम अगर छोड़ा जाए तो उससे हाँ विनाश तो होगा, और उससे लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा ना, हमारे असुर मार जाएंगे। अरे असुर कहाँ है, असुर तो हमारे अंदर है, तो वो मर जाएंगे, फिर नया असुर फिर पैदा हो जाएंगे, तो कितना कितना देर तक आप इस प्रकार ही करते रहेंगे। तो इसलिए आत्म शांति बनाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए, आत्मा का खोज करना चाहिए, मैं कौन हूं, ये प्रारंभिक अवस्था भी उनको पता नहीं है। और इतने बड़े बड़े जो कि संसार में ये सब गिने जाते हैं विद्वान श्रेष्ठ, जबकि वेद का बिल्कुल खिलाफ ये चलते हैं, समाज को ध्वंस करने में इनका बिल्कुल हाथ रहता है। केवल अधपतन अतिरिक्त और कुछ नहीं है संसार में। इसलिए असुर राज हिरण्यकशिप अपने जो सहयोगी असुर बंधु हैं उनको निर्देश देते हैं, आप यहां से तुरंत जाओ, पृथ्वी पर आप जाकर, यही यद्यपि पृथ्वी में हमारा कोई प्रत्यक्ष शत्रु नहीं है, देवता तो वो तो देवलोक में रहते हैं पृथ्वी से ऊपर, तो उनको कैसे मारना, वो तो उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको मारना नहीं, तो अपने आप वो खत्म हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे, आप जड़ को काट डालो, यज्ञ आदि संपन्न नहीं हो, गौएं को नष्ट कर दो, क्योंकि गौएं से जो पंचगव्य होते हैं तो यज्ञ के लिए उत्तम माने जाते हैं उनको, और उसी प्रकार वेद वेदों को नष्ट कर दो, ब्राह्मण वेद से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान नष्ट हो जाए, और उन मंत्रों को जिससे वो शिक्षा करते हैं तो वो शिक्षा भी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आधारभूत वस्तु को उन्होंने हटाना चाहते हैं, कितना कितना उनका दिमाग चलता है देखिए, यही है आसुरी स्वभाव संपन्न व्यक्ति के। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब जगत हित अहिता, जगत के अहित के लिए ये पैदा हुए हैं, कभी नहीं ये शांति एवं समृद्धि चाहते हैं, जानते हैं हम सुख में रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते, स्वभाव उनका ऐसे ही। अयम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये, आज इतने ही मरा हुआ है और ये असुर मर गए, फिर और दूसरों को मैं मारूंगा, बलवान सुखी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, ऐसे ही अपना मन में दृढ़ता बांधकर बैठे हैं असुर लोग, जानते हैं हमारे विनाश सुनिश्चित, क्योंकि भगवान विष्णु अजन्मा, उनके साथ द्रोह करेंगे तो मरना ही, भले ही परिणाम दूसरा है, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाने से उनका सदगति होती है, लेकिन वो भावना से थोड़ी वो ये करते हैं उनके साथ द्रोह करते हैं, ये तो ईर्ष्यापूर्ण भाव से ही करते हैं, तो उनको मारेंगे, उनको काटेंगे, उनका खून से अपने भाई जो कि रुद्र से बहुत प्रसन्न होता है तो उनको पिलाऊंगा, मैं जलांजलि तिलांजलि दूंगा, ऐसे ही रक्त से ही मैं तर्पण करूंगा और उनको प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार वो आसुरी स्वभाव संपन्न जो हिरण्यकशिपु इस प्रकार समाज में किस प्रकार उपद्रव करते हैं, फिर आगे देखेंगे सुंदर और विशेष पुंखानुपुंख वर्णन आएगा किन किन स्थानों में, और स्पष्ट रूप से इन इन जगहों पर तुम लोग हमला बोलना, उनको बिल्कुल राख कर दो, जलाकर राख कर दो, कुछ ना बचे, तो देखेंगे फिर ये विष्णु क्या करेगा। इस प्रकार उनके द्रोह, भले ही पिछले श्लोक में हम लोग पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार द्वेषात बैरात स्नेहात है ना, तो किस प्रकार भगवान को प्राप्त होते हैं, क्या है अतः वैराग्यानुबंधेन है ना, तो इस प्रकार भले ही ईर्ष्या हो तो विष्णु के प्रति हो, तो वो जितना ईर्ष्या करके भगवान विष्णु को स्मरण करता है हमें भक्ति के द्वारा उतना नहीं करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद से ये ऐसे कैसे, ये कहते हैं भले ही हम बोल दिए लेकिन भक्त भक्त है, भगवान का भक्त वो तो अलग है न्यारा है, और ये ईर्ष्या द्वेष करके भगवान को हमेशा कंस भयात भय से इसे काला काले कहते हैं कि जीरा में दाल में जीरा को देखकर कृष्ण के याद आ जाता है मेरे शत्रु है, ऐसे देखो कितना चिंतन करता है वो, लेकिन हम लोगों का होता ही नहीं, तो इसलिए एक उत्प्रेक्षा अलंकार उन्होंने दी, ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत के, ये नहीं कि भक्त का स्थान असुर प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कपिलदेव भगवान ये कहते हैं साधव हृदयम वयम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते ते न जानते आम तेव्यो मनागपि, साधु मेरे हृदय है और मैं इनका हृदय में निवास करता हूं, मेरे बिना वो संसार में और कुछ नहीं जानते, इस प्रकार अगर वो मुझे इतना प्यार करते हैं मैं भी उनको इतना प्यार करता हूं, तो उनके स्थान तो भक्तों के स्थान तो असुर ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक उपमा देकर वो कहते हैं, कहते असुर अगर सदगति को प्राप्त हो जाता है तो फिर भक्तों का क्या हो, अगर वो भजन करें किस प्रकार शांति एवं समृद्धि को प्राप्त हो। समृद्धि एवं शांति जो कि अविनाशी है, जो कभी भी नाश नहीं होने वाला, उस अविनाशी तत्व को हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं समाश्रिता ये पद पल्लव प्लबम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम 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 ना विपदम न तेषम पदम पदम यद विपदम ना तेषम। तो इसलिए अगर सम्यक रूप से भली भांति समझकर भगवान विष्णु के चरण में महत पद, ये संसार समुद्र को तरने के लिए बड़े नौकाएं, तो उनका आश्रय ले लेंगे तो फिर कितने भी तूफान आए आंधी आए तो कुछ भी हमारे बिगड़ने वाला नहीं है। समाश्रित सम्यक रूपे हम आश्रय ले लेते हैं तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए भक्त भगवान का इस प्रकार शरण में आने पर जो उनको सुख प्राप्त होता है, उनको और कुछ करना नहीं पड़ता है, सब भगवान संभाल लेते हैं। छोटे बच्चे को कुछ भी कितने भी विपत्ति आपत्ति आए तो उनको कोई लेना देना नहीं है, पिता माता है माँ बाप है तो वो संभाल लेते हैं उनको। उसी प्रकार छोटे बच्चे की तरह भक्त लोग भगवान का ऐसे ही बन जाते हैं तो भगवान का उनका सारे दायित्व वहन कर लेते हैं। योग क्षेम वहाम्य हम, है ना। हरे कृष्ण। कुछ कमेंट्री कुछ अगर
यस
ये जैसे आप जैसे भूखे हैं, जब आपको भोजन दिया जाता है और पानी भी उसके साथ में, तो उस भोजन को खाने के उपरांत और उस जल को पीने का उपरांत जैसे आपको महसूस होता है, आपको ताकत मिलता है, तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायनुभासन, ऐसे ही आपको शरणागति करने में आप अपना अनुभव में आ जाएगा। अभी जैसे हमारे माइंड बहुत रेस्टलेस है ना, तो वो स्थिर हो जाएगा भगवान में, क्योंकि हमारे और कुछ करने में हम, क्योंकि जो भी हम करते हैं सब अज्ञान बस करते हैं, तो गलतियां तो होती है, तो वही अशुभ कर्म फल का परिणाम है दुख। लेकिन जब भगवान के शरण में हम चले जाते हैं तो भगवान हमारे सारे केयर ले लेते हैं, तो फिर भगवान वो सर्वज्ञ हैं, सर्ववीत है, सब जानते हैं, तो किसको क्या किस प्रकार रखना है तो उनके लिए वो व्यवस्था कर देते हैं, तो और उनको कुछ दुख नहीं होता है। और जितने जितने आपका डिग्री ऑफ सरेंडर आपका जितना अधिक अधिक होता है, तो उतने उतने ही आप अपने जो आनंद स्वरूप स्वरूप को आप प्राप्त होते हैं, तो उतने उतने आनंद में ही आप डूब जाते हैं। ये है ना, तो उसका अनुभव होता है ऐसे ही, जैसे उदाहरण दे दिया श्रीमद् भागवत में, तो क्या है तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायनुघासन, पूर्व लाइन हाँ, भक्ति परेशानो भव विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथास्नते स्युः क्षुत तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायनुघासन। ये कहते हैं जब भगवान को भगवान का शरण में हम चले जाते हैं, है ना, तो उसे क्या भक्ति परेशानुभव विरक्ति, भक्ति पर ईशान अनुभव भगवत अनुभव और संसार से वैराग्य, ये तीनों एक साथ में होते हैं। जब हम पूर्ण शरणागत होता होते हैं तो क्या होता है, समझ में आया? भक्ति भगवान के प्रति, भगवान के चरण में हमारे रति जागृत होता है। भक्ति ईशानुभव, परेशान परेशानी नहीं है, ईश का अनुभव होता है, परमेश्वर का अनुभव, भगवान का हम साक्षात्कार करते हैं। और संसार से जब उनको हो जाता है, संसार से हमें हमको विरक्त विरक्ति आ जाती है। और दृष्टांत देते हैं, जैसे ये क्षुधार्थ व्यक्ति को भोजन वो जल जब दिया जाता है, तुष्टि पुष्टि क्षुत अपाय अनुघासम, एक साथ में जैसे निवृत्त होता है उसी प्रकार उनको भी ये हो जाएगा। जय ए अरे कबीर जी का, कबीर जी का गबीर दोहा पानी में मेन भी